हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ड्राइवर ने पूछने पर स्वीटी ने अरुण के बारे में सारी सच्चाई बता दी, साथ ही ये भी बताया कि वो सुनैना का छोटा भाई है। ड्राइवर को यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकालकर आदित्य का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। तभी स्वीटी ने कहा, क्यों, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भैया को क्यों परेशान कर रहे हैं? वो पहले ही इतने ज्यादा परेशान है। अगर ऐसा ही है तो गीता दी या रवि भैया को फोन करके पूछ लीजिए, वे अरुण को जानते हैं। स्वीटी ने पूरे आत्मविश्वास से ये बात कही। वो सिर्फ इतना चाहती थी कि आदित्य को ये पता न चले कि वो इस तरह अरुण से मिलती है, क्योंकि आदित्य पहले ही सुनैना को लेकर इतना परेशान है कि वो दोनों की बात बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। ड्राइवर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात अभी के लिए मान लेता हूँ, लेकिन इतना बताइए कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ड्राइवर का ये सवाल सुनकर अरुण और स्वीटी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें इस सवाल की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। लेकिन स्वीटी समझ गई कि अगर उसने ज्यादा देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर को उस पर फिर से शक हो जाएगा, इसलिए उसने तुरंत एक जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे अरुण का कॉलेज भी उसी तरफ है, मेरी उससे बात हुई थी, उसने बताया कि वो आज लेट हो गया है, मैंने उससे कहा कि वो मेरे साथ ही चल ले, वैसे भी मैं अकेले ही जाती हूँ। ड्राइवर ने उन दोनों की तरफ देखते हुए सवाल किया, अच्छा कब बात हुई थी आप दोनों की? स्वीटी ने तुरंत जवाब दिया, निकलने से कुछ देर पहले। अरुण ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही कॉल करके स्वीटी से पूछा था कि क्या मैं उसके साथ चल सकता हूँ, उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपको तो शायद कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, मैं उतर जाता हूँ और अकेले ही आ जाऊँगा कॉलेज। इतना बोलते हुए अरुण ने एकदम बेचारा सा चेहरा बनाया और अपनी सीट से उठने की कोशिश करते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि ड्राइवर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बच्चे, रुको, तुम अकेले कहीं मत जाओ, अगर तुम भी सर की फैमिली से हो तो तुम्हारे लिए भी ऐसे अकेले आना जाना सेफ नहीं है, रुको मैं तुम्हें भी तुम्हारे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। ड्राइवर की ये बात सुनकर अरुण दोबारा चुपचाप सीट पर बैठ गया, एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर। स्वीटी ने उसकी तरफ देखकर बेबसी से अपना सिर हिलाया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और स्वीटी के इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन कार में लगे मिरर से वो पीछे बैठे उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों धीमी आवाज में आपस में कुछ बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर वो दोनों चुप हो गए। सुनैना का वीआईपी हॉस्पिटल रूम। अब तक मूडिया में कुछ लोगों को इस बारे में खबर हो चुकी थी और वे लोग अपने अपने हिसाब से न्यूज़ बनाकर अपने अपने चैनल पर दिखा भी रहे थे, जिसमें किसी के हिसाब से आदित्य का एक्सीडेंट हुआ है तो किसी के हिसाब से सुनैना का। कोई बोल रहा था कि वो कोमा में है और कोई बोल रहा था कि उसे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन पूरा सच क्या है ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि आदित्य की सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत ही अच्छा था और उस हॉस्पिटल के उस हिस्से में आदित्य और उसकी जान पहचान वाले लोगों के अलावा किसी की भी एंट्री अलाउड नहीं थी, यहाँ तक कि सिर्फ कुछ स्टाफ और डॉक्टर्स को ही वहाँ पर आने की परमिशन थी। आदित्य को नदीम ने इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया था, लेकिन आदित्य इन सब के बारे में इतना नहीं सोच रहा था, वो बस पूरी तरह से सुनैना को रिकवर होते देखना चाहता था और वो भी जल्द से जल्द, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि इसमें 1 से 2 महीने का समय लगेगा और तभी सुनैना पूरी तरह से ठीक होगी, लेकिन 1 हफ्ते बाद वो उसे घर ले जा सकते थे। अभी 1 हफ्ते के सिर्फ 2 दिन बीते थे और सुनैना को होश में आए हुए भी सिर्फ 2 दिन हुए थे। आदित्य सुनैना के रूम में उसके सामने बैठा हुआ पेपर टॉवल से उसका चेहरा साफ कर रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने सुनैना को सूप पिलाया था और सुनैना भी आज 2 दिन के बाद ही बिस्तर पर उठकर बैठी हुई थी। सुनैना बहुत ही प्यार से आदित्य की तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसका चेहरा साफ करने के बाद सामने रखा हुआ खाली कटोरा उठाकर साइड में ट्रॉली पर रखा। तभी सुनैना ने उसका हाथ पकड़कर थोड़ा सा आगे आई और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए कहा, बहुत परेशान कर रही हूँ ना मैं तुम्हें आदि? परेशान तो नहीं, लेकिन ये बोलकर पराया जरूर कर रही हो अपने आदि को, आदित्य ने नाराजगी से कहा। नहीं आदि, मेरे कहने का मतलब नहीं था, और तुमने कुछ खाया या नहीं? सुनैना ने तुरंत अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके सिर के पीछे के हिस्से पर चोट लगी थी, इसलिए जैसे ही उसने एक झटके से सिर उठाया उसे सिर में तेज दर्द हुआ और उसने एक हाथ अपने सिर पर रख लिया। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं खा लूंगा बाद में, तुम्हें अभी मेडिसिन भी लेनी है और उसके बाद तुम्हारा बैंडेज भी चेंज होगा, अभी घाव पूरी तरह से भरा नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कुछ भी मत सोचो। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सुनैना ने शायद दर्द की वजह से अपने सिर पकड़ा हुआ है, वो तुरंत ही अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे लगाकर उसे बेड पर लेटाने में मदद करते हुए बोला, लेट जाओ, रेस्ट करो, इस तरह से तकलीफ मत दो खुद को, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी तो फिर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, किसी भी तरह के दर्द में, और ये सब भी मेरी वजह से। आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए अपने करीब किया और धीरे से नहीं में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, और ये सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता तो मैं क्या करती, क्या मैं तुम्हें देख पाती ऐसी हालत में? तुम तो फिर भी बहुत स्ट्रांग हो आदित्य, लेकिन मैं शायद इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं नहीं देख पाती तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में इस बेड पर, मैं तो शायद तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकती ऐसी किसी सिचुएशन में, और वहाँ पर भी तो तुम मुझे बचाने के लिए आए थे ना, तो फिर? आदित्य ने बहुत ही मायूसी से कहा, लेकिन वो स्टूपिड प्लान भी तो मेरा ही था ना, जिसकी वजह से तुम वहां पर फंसी थी, इसलिए सबका जिम्मेदार। सुनैना अपने दोनों हाथों के बीच आदित्य का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखती हुई बोली, जो हो गया वो हो गया आदित्य, तुम खुद को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराना बंद करो और ये सोचो कि हम अभी भी साथ हैं और उस विराज के गलत इरादे पूरे नहीं हो पाए। विराज के बारे में सोचते हुए आदित्य थोड़े गुस्से में बोला, वो तो मेरे रहते कभी पूरे हो भी नहीं पाएंगे, तुम्हें मुझसे छीनने के बारे में सोचना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी और इस गलती की सजा भी उसे मिलेगी। सुनैना भी उसकी बात पर बोली, हाँ पुलिस और कानून जरूर उसे उसके किए की सजा देंगे, तुमने उसे पुलिस के हवाले करके बहुत अच्छा किया आदित्य। सुनैना की इस बात पर आदित्य काफी कुछ सोचते हुए उसकी तरफ ही देखने लगा, क्योंकि उसने सुनैना को इस बारे में कुछ भी क्लियर नहीं बताया था। उसने उससे साफ झूठ तो नहीं बोला लेकिन सच भी नहीं बताया, क्योंकि उसकी ऐसी हालत में वो नहीं चाहता था कि सुनैना इस बारे में सोचकर परेशान हो। आदित्य ने अभी भी उसकी गलतफहमी दूर नहीं की और सुनैना की इस बात पर हल्के से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एकदम से हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला और उस तरफ से आवाज आई, रुकिए रुकिए, आप लोग इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। दरवाजे के बाहर से आती हुई एक जानी पहचानी सी आवाज आदित्य और सुनैना दोनों के कानों में पड़ी, एक बार में एक ही विजिटर अलाउड है और अभी पहले ही।
वो आवाज सुनकर उन दोनों ने उस तरफ देखा और सुनैना को अपना सिर उस तरफ करने में थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो आदित्य ने उसे उसी तरह सीधे लेटे रहने को कहा और खुद ही उठकर दरवाजे की तरफ आकर देखने लगा कि क्या मामला है। वो दरवाजे तक आया तो उसने देखा खुले हुए दरवाजे के बाहर तीन लोग खड़े हुए हैं, जो कि उसके चाचा, चाची और बुआ हैं। उनमें से चाची ने नदीम से बहस करते हुए तुनक कर कहा, हमें ज्यादा रूल्स मत बताओ, VIP रूम है और यहाँ हम जितने भी लोग चाहें जा सकते हैं। आदित्य खुले हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, हाँ आ सकते हैं लेकिन मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई भी नहीं आ सकता और आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं। इस बार आदित्य की बुआ आगे आते हुए बोली, अरे बेटा इस तरह से तो मत बोलो, आखिर हम तो तुम्हारे अपने हैं ना, और ऐसे सुख दुख के वक्त में तो अपने ही काम आते हैं, हमसे भला कैसी नाराजगी। आदित्य अपने जिद्दी और मतलबी रिश्तेदारों को बहुत अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उनमें से कोई भी इस वक्त सुनैना से मिले या उसे देखे, इसलिए वो तुरंत ही उस VIP रूम से बाहर आ गया और आते ही उसने दरवाजा भी बाहर से बंद कर लिया और अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधता हुआ गुस्से भरी नजरों से उन सब की तरफ देखते हुए बोला, अपने और पराए का मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए मेरे सामने तो आप सब अपना ये दिखावा बंद करिए और बताइए क्यों आए हैं आप सब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने वाला आपको। आदित्य की कड़वी बातें सुनकर उसकी बुआ जी दुखी होने का नाटक करती हुई बोली, आदित्य बेटा तुम हमारे बारे में ऐसा सोचते हो क्या, हम तो तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर यहाँ पर आए थे, लेकिन अच्छा हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो फिर वहां अंदर कमरे में कौन है? आदित्य ने एक सरसरी निगाह उन सब की तरफ डालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, इस बात की खुशी है आप लोगों को या फिर दुख, और कमरे में कोई भी हो आप लोगों को इन सब से क्या लेना देना। आदित्य की ऐसी बदतमीजी भरी बातें सुनकर उसके चाचा ने गुस्से में और थोड़ी तेज आवाज में कहा, आदित्य ये कोई तरीका होता है अपने बड़ों से बात करने का? और कम से कम बाहर वालों के सामने तो ठीक तरह से पेश आया करो हम सबसे। उन लोगों को बहस करते देखकर वहां आसपास से निकलते हुए लोग वहां पर रुक गए थे। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टाफ, आदित्य का सिक्योरिटी स्टाफ और उसका असिस्टेंट, सारे लोग भी वहां पर ही खड़े थे। आदित्य ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे ये सब ज्ञान नहीं चाहिए, सीधी बात सीधी तरह से अपना यहाँ आने का मकसद बताइए आप सब, क्योंकि मुझे पता है आप सब कितने मतलबी हैं, बिना मतलब के तो आप लोग अपने सगे बच्चों को भी देखने ना जाएं, तो फिर मैं तो फिर भी आपका भतीजा हूँ। आदित्य की ये बात सुनकर वे सब एकदम सन रह गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्रमशः